राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज द्वारा 5 मई 1993 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
भगवान ने जब सृष्टि रचना की
हाँ।
तो कहीं से बिल्टी नहीं मंगाई
हाँ।
तो आप भगवान खुद ही संसार रूप बन गए
हाँ।
तो सब कुछ नाम धरो संसार
हाँ।
तो दूसरी ओर जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए
हाँ।
तब 12 महीने तक भगवान ग्वाल बालों जुत्ती कपड़े सब बन गए, तो फिर वो लीला नहीं रही
ना। लीला वही है,
तो दोनों
वही लीला है। वही लीला थी, उस लीला में विशेष लीला हो गई। पहले बछड़े ग्वाल बाल भी भगवान का स्वरूप ही थे, ब्रह्मा जी भी भगवान का ही स्वरूप थे, और ब्रह्मा जी चुरा ले गए हुए भी भगवान के स्वरूप थे, और नए बने हुए भगवान के स्वरूप थे। तत्वतः परमात्मा ही परमात्मा थे।
तो दोनों में क्या अंतर है? मूल प्रश्न ये
अंतर ये आता है, जैसे रामायण में भक्ति का वर्णन है, तो उसमें प्रथम भगत संतन संघ कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा करे कपट तलिगान, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत कर्मा, निरतन निरंतर सज्जन धर्मा। अब साते सब मोई मोय जग देखें, साते सब मोई मोय जग देखें, मोते अधिक संत कर देखें। कैसे बैठेगा? ऐसे सब ब्रह्मा जी की सृष्टि है, पहले वाली वो भी भगवान का स्वरूप है, परंतु जो भगवान गतरा और बसे और ग्वाल बाल बन गए ना, ये विशेष है। जिस तरह से साते सब मोई मय जग देखे, पर मोते अधिक संत कर लेखे, तो मोई मय जग दे संत जगत में नहीं आएगा। साते सब मोई मय जग देखे, और मोते अधिक संत कर लेखे, ऐसे सब कुछ वासुदेव है, परंतु कृष्ण भगवान है, राम है, ये विशेष है, और फिर ये बछड़े ग्वाले को विशेष है, तो संत की विशेषता होती है, ये विशेष है सब परमात्मा ही। इसमें शंका बोलते रहो, जो शंका हो बोलो।
भक्ति साथ अनुपम सुख मिला, मिले ही जो संत हो अनुकूल, तो संत हो अनुकूल का क्या रहस्य है?
संत का अनुकूल का रहस्य है कि संतों के मन के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनावे। वे जो कहते हैं वे मानते हैं, वो आज्ञा देते हैं, वे सिद्धांत सिद्धांत को अपना अच्छा समझते हैं। जैसे संता ने अपना सिद्धांत पालन करने के लिए प्राण दे दिए पर सिद्धांत को नहीं छोड़ा, तो उस सिद्धांत के अनुसार अपना चलना है, तब संत अनुकूल आप सब हो जाएंगे। आपके मन को अनुकूल कोई होगा तो क्या आप उनके अनुकूल नहीं होंगे? हरेक प्राणी सिंह सांप आप क्रूर जंतु है, उसके मन के अनुकूल वो भी अनुकूल हो जाएगा। ये कायदा है, ये राम प्रति भगवान का, ये सब में ऐसी बात है। तो वो विशेषता से भगवान के अनुकूल हो जाते हैं। तो विशेष संतों को देखे तो सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप देखे मतलब संतों को विशेषता से भगवान के स्वरूप देखे। ऐसे रामकृष्ण आदि के विशेष स्वरूप है, ग्वाल बाल बछड़े से भगवान बने तो विशेष स्वरूप है।
किसी को पारस तुल्य संत मिल जाए असली और वह न पहचाने तो उसे असली लाभ मिल जाएगा क्या? उन संतों को न पहचाने असली संतों को तो उसको लाभ मिल जाएगा क्या?
लाभ तो नहीं मिलेगा, बिना जाने मिलेगा, बिना मिलेगा। मन जानेगा तो जिससे जितने जितना जानेगा उतना उतना ज्यादा लाभ होगा।
संत की पहचान कैसे हो?
संत की पहचान बाहर से नहीं होती, पता नहीं लगता है। संत की पहचान क्या होती है इसका भाई हमें पता नहीं है। मैंने जैसे सुनी है और पढ़ी है और समझी है उसके अनुसार बात कहता हूँ, मेरी बुद्धि के अनुसार। संतों के मिलने से हमारी जो शंकाएं हैं वे बिना पूछे शांत होती है, बिना पूछे समाहित हो जाती है एकदम, और चित्त में संतोष होता है। और वो ठीक मिल जाते हैं तो हमारे भगवान का चिंतन, भगवत स्मरण और देवी संपत्ति स्वतः अपने आने लगती है। अपने देवी संपत्ति स्वाभाविक दया क्षमा उदारता संतोष त्याग ये होगा। प्रथमम महताम सेवा तद दया पात्रता तथा तत्व श्रद्धा तेषां धर्मेषु, उनके द्वारा द्वेष राष्ट्रभूत है ना, इसमें श्रद्धा होगी। जो संतों को पहचानेगा उसने श्रद्धा द्वेष राष्ट्रभूताना मित्र कर्म ये धर्म्यामृत है जो लक्षण है, ये लक्षण देवी संपत्ति के लक्षण आने लगेगी असली संतों में। और जरूर जरूर, और वो ऐसे संत उनके ऊपर से गए, हमारे से कुछ नहीं चाहते, ये कितने कैसे है कहाँ तक है परमात्मा नहीं, परंतु हमारे से नहीं चाहते कुछ भी, कोई सेवा है कोई वस्तु है शरीर की सेवा अनुकूल, हमारे से कुछ नहीं चाहते। कुछ न कुछ चाहते हैं तब तक तो वो वास्तव में संत मिले नहीं है, संत को नहीं जाएंगे। और देवी संपत्ति आएंगे, शंकाओं का बिना पूछे समाधान होगा और शांति विशेष होने लगेगी, भजन बड़ा तेजी से होने लगेगा, दुर्दम दुराचार बिना जाने दूर हो जाएंगे, बिना दूर किए स्वतः। मेरी ऐसी बातें सुनी है मैंने। एक भाई कलकत्ते में था, वो कहता कि मेरे को ये खेल दे फुटबॉल का खेल होता है ये देखने का मेरे बहुत शौक था, तो पीछे भीड़ हो जाती हूँ मैं पहले जाकर बैठता वहां, और घाम सहता शायद पीछे देरी से होती और प्यास लगती तो गंगा जल का गंगा कण, गंगा कण का पानी वो पीता था, प्यास लगे जाऊं कहाँ अड़ता था। और सत्संग करने के बाद में सब छूट गया, सत्संग में कभी निषेध नहीं आया फुटबॉल में जाना, ऐसा सत्संग में विवेचन कभी नहीं आया। पर न आने पर भी अंतःकरण इतना निर्मल स्वतः होता है कि दुर्गुण दुराचारों से स्वाभाविक उपलब्धि होती है, उनमें दूसरा आचरण आ नहीं सकते, दूर हो जाते हैं। तो ये बिना जाने भी संतोष दूर होते हैं, और जान कर संतों को तो उनसे विशेष लाभ होता है। तो ज्यादा प्रश्न करूंगी,
क्षमता ममता कामना तीनों में से साधक किसी एक को सर्वथा छोड़ दे
तो तीन छूट जाएंगे,
तीनों
सर्वथा छूटे तो सब हो जाएगा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पर मनोगतान आत्मनिवाद तुष्ट, संसार से वृद्ध हो जाएंगे बिल्कुल एकदम ठीक।
माया जीव ग्रंथ पड़ गई यद्यपि मिशा छूटत कठिनाई, जीव एक हरदम मोह तम मोह विशेषी, तो उपरोक्त ग्रंथि कैसे दिखकर ग्रंथि छूटने का सरल उपाय बताए?
सरल उपाय ग्रंथ विवेचन है, इसको ठीक समझे ठीक तरह से। जब चेतन ही गांठी पड़ी गई यद्यपि मिशा छूटत कठिन ही, तो वो गांठ क्या है वो बता दू, आप कृपा करके मेरी बात को सुने, और वो आपके ठीक समझ में तो माने, नहीं तो बिल्कुल न माने, हमारा आग्रह नहीं है। परंतु मैंने समझा वैसे बताता हूँ। ये जो मैं हूँ है, हरेक कहता मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, और समझदार हो, बेसमझ हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कोई ज्ञान हो, मैं हूँ। और मैं केवल मनुष्यों में नहीं है, कुत्ते में भी मैं हूँ, गधे में भी मैं हूँ, सूअर में भी मैं हूँ, ये मैं हूँ है। ये तो हूँ तो है चेतन, और मैं है जड़, इन दोनों की एकता, इसका नाम है चतुर्ग्रंथि। खास क्योंकि गीता में आया है, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, सातवें अध्याय में भगवान ने विशेष कहा है कि मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, और जिससे जानने के बाद ज्ञातव्य नावशिष्यते, उसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा कह करके और वर्णन किया। वहां भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रदर्श अपरेयम, ये अपर अपर कर रही है आठ प्रकार की, जो तेज वायु आकाश ये और मन बुद्धि अहंकार, ये आठ आठ प्रकार की अपरायम। अगर अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इनसे परा प्रकृति मेरी है, ये अपरा जो जी परा है वो जीव भूता महाबाहो ये एकदम धारी जगत, वो जीव स्वरूप से है जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। तो ये इस कार्य है जीव भोग्य है, ये संसार जगत सृष्टि मात्र जितने गए भगवान ने तो बनाई है, जीव भोगता है इसका। हम तो फरवरी पढ़ते थे छोटा ही थे तो मैं कहूँ ये जीव तो भगवान का जमाई है। इसका यूं जीव भोग्यम जगत व्याप्या नेत्र श्लोक है, तो भगवान का तो पैदा हुआ है संसार है, और संसार को धारण जीव ने किया है। भगवान की दृष्टि में मतलब मई सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणि गाना आयु रेते व सात्विक भाव राजस्त मत एव मेरे से ही हो रहे मैं ही हूँ, मतलब प्रथम नान्य किंच है। तो भगवान की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा है, तो संसार धारण किसने किया, अपरा पता ही जीव भूता महाबाहो ये एकदम धारी प्रकृतिया एकदम दृश्यमान जगत धारिय थे, ये जगत धारण किया जाता है जिस प्रकृति से, वो प्रकृति है जीव रूप, तो जीव रूप से परमात्मा का अंश जीव रूप प्रकृति को, ये तीन लिंगों का अपने गीता दर्पण में ये बताया है कि जीव को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग कहा है, और जगत को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग कहा है, और परमात्मा को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग कहा है गीता में। इसका आत्पर्य कि ये लिंग नहीं है, अलिंग तत्व है ये, ये आपकी दृष्टि में इस बात समझाने के लिए कहते हैं। तो वहाँ अपरा ये बताया ना, यहाँ अपरा का जीव भूता पंद्रह अध्याय में ममई वांशो जीव लोके जीव भूत पुल्लिंग का, यहाँ जीव भूता में प्रकृति प्रकृतियों का, वो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन वो जीव मन शान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर अध्यात्म का। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि वो मैं ही हूँ, तो अब वो हुआ भगवान का अंश चेतन, और अहंकार हुआ प्रकृति जड़ प्रकृति का कार्य, वो आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति, उसमें आया अहंकार, वो हूँ और अहम ये मिला, ये है जड़ अहम तो है जड़ और हूँ है चेतन सत्ता है, तो वो अहम होने का अंश हूँ है। जब अहम नहीं रहेगा तो है रहेगा, तू है यह है वह है, और मैं है नहीं मैं हूं, उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष में मैं हूं, ये मैं होता है तब हूं होता है। ये प्रयोग जमाने अप्रयोग जमाने चाहे उत्तम के प्रयोग करें चाहे न करें, उत्तम पुरुष होता है वहां, प्रयोग न करें तो होता है प्रयोग जमाने अप्रयोग जमाने से मध्यम पुरुष होता है, ऐसे उत्तम भी तथा भूत है उत्तम, तो उत्तम पुरुष होता है। तो इस बात में उत्तम पुरुष हुआ तो ये स्वयं मैं कहता है, तो मैं उत्तम पुरुष होने से हूँ हो गया, है का ही है, तू है यह है तो सब में संपूर्ण में है, घाट है, मिट्टी है, पुरुष है, स्त्री है, कपड़ा है, लोहा है, अशुद्ध से अशुद्ध मैला है, मूत्र है, नदी है, गंदी है, बढ़िया है, पत्थर है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, सब में है तो है तो परमात्मा का अंश हुआ। और उसमें जो मैं अलग करता है वो जीव का स्वरूप हुआ, वो जब मैं को पकड़ता है तो अनेक दुनिया में घूमता है, और मैं को रहित कर देता है तो निर्ममो निरहंकार शांति में गति विहाय कामान यश कर्मयोग की दृष्टि से विहाय कामान यश सर्वान कुमांश निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मत गति। तो निरहंकार हुआ तो उसकी क्या स्थिति है, एक ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निरहंकार होती ब्राह्मी स्थिति, ये अहंकार प्रकृति का है आश्रय, इस जड़ को लिया तो जड़ ग्रंथि हो गई और अहंकार रहित हुआ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ निर्नाम ब्राह्मी मोह्य थी। जब निर्मो निरहंकार हुआ तो ब्राह्मी स्थिति हो गई। तो 71 में निर्मो निरहंकार शांति मती गलती और 72 में दूसरे अध्याय का अंत में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ निर्नाम प्राप्ति मोह्य थी। इस ब्राह्मण स्त्री को प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, स्थित्वा श्याम अंत काले भी, अंत काल में भी इसमें स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार के साथ ही इसका जन्मन होता है तो ये जड़ तो है अहम और हूँ मैं हूँ, ये है चेतन, इन दोनों को एक मान लिया मैं हूँ, इतना घुल मिल गया है मैं हूँ, इसमें हूँ को तो गौण कर दिया मैं को मुख्य कर दिया, ये ग्रंथि की दृढ़ता, फिर वो ग्रंथि की मुख्यता रहेगी, ये सिद्ध ग्रंथि है।
छूटने का उपाय और बताइए।
छूटने का उपाय ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों स्वतंत्र कारण है इसके।
सरल उपाय छूटने का, सरल उपाय
छूटने का सरल उपाय भगवान के सामने, हे नाथ हे प्रभु मैं हूँ सच्चे हृदय से, जैसे कन्या अपने आप को वर के समर्पित कर देती है, अपना गोत्र भी मिटा देती है और कुछ नहीं, कुछ संबंध नहीं, जहाँ पैदा हुई पढ़ी रही बड़ी हुई योग्य बनी, उस परिवार से कोई संबंध नहीं, ससुराल से संबंध इतना हो जाता है गणेश के, वहां जाकर के माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है और मेरा ही परिवार दिखता है, पीहर को बिल्कुल भूल जाती है। ऐसे आप अपने को मनुष्य रूप से भूल करके और परमात्मा के स्वरूप हो जाओ तो साफ हो जाओ, ग्रंथि छूट जाएगी। जड़ का जितना आदर करोगे उतनी ग्रंथि दृढ़ होगी और जितना चिन्मय का आदर करोगे उतनी चेतनता की प्रधानता हो जाएगी, प्रधानता होते चिन्मय तक रहते ही जड़ता छूट जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ग्रंथि भेदन हो जाएगा, केवल भगवान से प्रार्थना करोगे समझ जाएगा। और उपाय कई है
महाराज जी, जीव ईश्वर कांश होने के कारण, ये जीव ईश्वर कांश होने के कारण और ये चेतन है और फिर से माया से मोहित कम हो जाता है, शास्त्र चिंतन इतना अभ्यास गंगा स्नान तीर्थ संतों के चरणों में रहने के बावजूद भी ये माया इसको मोहित क्यों कर देती है?
माया मोहित आप पूछते हैं कि परमात्मा का साक्षात परमात्मा का अंश है, मम ही वांश हो ममांश नहीं के मम ए वांश बिल्कुल मेरा ही शुद्ध अंश है, ऐसा मम ए वांश का तात्पर्य है। ऐसा परमात्मा का अंश होते हुए ये प्रकृति के जड़ पदार्थों के उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के वशीभूत क्यों हो गया, प्रतंत्र क्यों हो गया, गीता में अवश्य कहा है कई बार, तो ये परवश कैसे हो गया, ये प्रवेश वैसे हो गया कि जड़ से सुख चाहता है, ये सुख की इच्छा है, इस इच्छा से ये जड़ प्रश्न हो गया। अगर ये सुख इच्छा सर्वथा त्याग दे कि हमें ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ये होते आद्यंतवंत कौन थे नते सुरमते उधा, अगर सांसारिक पदार्थ जड़ पदार्थ संयोग जन्य सुख है उसमें रमण न करे तो मुक्त हो जाएगा।
बोध क्या शास्त्र से ही होगा? बोध बोध होने के बाद तो इसका असर नहीं होगा, इसके
बोध होने से नहीं होगा, पहले विवेक होगा, विवेक के बाद में विवेक ही बोध में परिणत हो जाता है।
शास्त्र का विवेक तो ये
शास्त्रीय विवेक काम का नहीं है, उसी का भाव होता है, शास्त्रीय जितना विवेचन है वो कंठस्थ किया हुआ सीखा हुआ है, अनुभव किया नहीं है।
क्या उसके लिए योगाभ्यास किया जाए?
इसके लिए क्या क्या योगाभ्यास किया जाए?
ना अभ्यास नहीं होता, अभ्यास से कभी ग्रंथि भेद नहीं होता। अभ्यास कितना ही तेज करो अभ्यास से नहीं होता, अभ्यास से प्राप्ति होती ही नहीं। अभ्यास करोगे तो अभ्यास के साथ में दृढ़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप इतने बैठे कोई सज्जन बतावे कि बिना दृढ़ की सहायता के कोई अभ्यास हो? तो जड़ता उसके सहायता में अभ्यास होगा, वो जड़ता क्या कैसे करेगा? जड़ता तो उसकी उपाय सी होगी, जड़ता तो उनका साधन होगी, तो कैसे त्याग करेगा? तो अभ्यास से वो नहीं होता है, वो बोध होने से होता है, तत्व तो ज्ञान होने से होता है।
परोक्ष बोध से होगा, अप्रोक्ष बोध से होगा?
परोक्ष बोध से होगा या अप्रोक्ष बोध से होगा?
परोक्ष होता ही नहीं, बोध अप्रोक्ष ही होता है।
बोध अप्रोक्ष,
परोक्ष बोध होता ही नहीं। बताया है कि बोध दो प्रकार है, परोक्ष मुक्ति का साक्षात हेतु दृढ़ परोक्ष, वो अप्रोक्ष भी दृढ़ दो तरह भेद बताया है। ये बताया वास्तव में अपरोक्ष होता है, होते ही दृढ़ ही होता है, वो आदृढ़ होता ही नहीं। दृढ़ आदृढ़ दो अभ्यास में होता है, जहाँ अभ्यास नहीं होता वहाँ दृढ़ आदृढ़ नहीं होता है। ये गंगा जी है ऐसा सुनते ही गंगा जी हो गया, इसका अध्यास करना नहीं पड़ेगा, दृढ़ता करना नहीं पड़ेगा, अपरोक्ष ज्ञान सतत दृढ़ होता है।
रामायण पाठ में जितनी रुचि और एकाग्रता आती है उतनी माला जपने वाली नहीं आती, तो क्या रामायण का पाठ?
बिल्कुल रामायण का पाठ करो, तल्लीन होकर के मस्त होकर के निहाल हो जाओगे,
कल्याण हो जाएगा।
बिल्कुल कल्याण जितनी सस्ती कोई चीज है ही नहीं। पतिव्रता पति का पतिव्रत पालन करे तो कल्याण हो जाए, पुत्र माँ बाप करना माने तो कल्याण हो जाए, नौकर मालिक का करना कल्याण हो जाए, शिष्य अगर गुरु का करना माने तो कल्याण हो जाए। कल्याण तो सबसे मौजूद पड़ा है, वो तो सतह सिद्ध है, वो थोड़ी जाता है, वो तो है पहले से, हो गया है तो मिट जाएगा। उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली होती है, निर्कृतकमता दैनित्यम कार्य घटवत, वो नित्य नहीं हो सकती। इस वास्ते मुक्ति होती नहीं, कल्याण होता नहीं, कल्याण है केवल उसे ख्याल करना है।
जीवात्मा का संसारी नाता झूठा है, ईश्वर प्राप्ति का ही एक लक्ष्य है, तो पितरों की पूजा तर्पण क्यों करते हैं?
शास्त्र की आज्ञा से करते हैं, तस्मात शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर तुम हार सही। भगवान ने कहा कितना ही ज्ञानी कितना ही बोध कितना ही पंडित हो, परंतु कर्तव्य कर्तव्य शास्त्र सामने रखो। गीता कहती है तस्मात शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञातवा शास्त्र विधान हो कर्म कर तुम हार सही। इस वास्ते श्राद्ध तर्पण पिंड सब करना चाहिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। शास्त्र अपना कोई संस्कार नहीं, अपनी कोई ममता नहीं, पिंडों में भी पितरों के साथ भी हमारी ममता नहीं, किंतु उसकी परंपरा आया है तो पांच ऋण है, तो वे ऋण चुकाने के लिए साध तर्पण करना है पितृ ऋण चुकाने के लिए।
पितर अपने परिवार वालों के हित के लिए भला बुरा बनाते हैं क्यों?
नहीं, पितर तो सहायता ही करते हैं, प्राय नहीं बनाते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि अनिष्ट कर देते हैं। मन पितर होते हैं ठीक शुद्ध पितर जोड़ने में तो अपने परिवार वालों को सुखी देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, पंचायत कर देते हैं, ठीक कर देते हैं पितर।
पितर भूत प्रेत अलग अलग हैं क्या?
हाँ अलग जाति है, ये सबको देव योनि बताया अमर कोश में, भूतों में देव योनि, भूत प्रेत पिशाच सब देव योनि।
कोई अनपढ़ ज्ञानी मूर्ख या पंडित कैसे जाने समझे कि प्रभु से मिलना घटित हो रहा है?
प्रभु से मिलना छिपता नहीं, जैसे कोई कहे सूर्योदय का क्या पता लगे, लाओ बेटी लाओ देखे सूर्योदय हुआ नहीं, देशाई लाओ जी देखे सूर्य, तो सूर्य देशाई लगे जैसा नहीं आप ही पता लग जाएगा, सूर्य प्रकाश करने के लिए नहीं, ऐसे जिसको बोध हो जाएगा थक जाए तो उसको दूसरे परीक्षा की जरूरत नहीं।
दुर्वासा ऋषि का इतना क्रोध था इतना अहंकार था फिर भी ऋषि कैसे कहलाए?
तो ऋषि तपस्वी थे, तपस्वी ऋषि होते हैं, ऋषि तपस्वी होते हैं, ऋषि वो मंत्र के सार है, मंत्र देखने वाले भी होते हैं और तपस्या करने से ऋषि मुनि हो जाते हैं। देखो रामायण माया है, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग कर नहीं सब पीती, सूर्य नर मुनि आया उसमें और सब सकल जगमाही सुपने उपरू परमार्थ नाही, ऐसे उनमें रेत रही तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो तुम्हारे सेवक है उसका दर्जा है, उतना ऋषि मुनि का दर्जा नहीं है। अब तो भाई बताओ भगवान, तो भगवान को भक्त प्यारा है समझे, प्रियो ज्ञान जो अत्यर्थम अहम और सत मम प्रिय, अत्यर्थम प्रिय मम प्रिय। इस बार से ऋषि मुनि है ये तपस्या से त्याग से अपने कष्ट सहने से ऐसे बन जाते हैं, और उससे मुक्ति थोड़ी हो जाती है।
बालकों और स्त्रियों के सुधार के लिए, बालकों के लिए और स्त्रियों के सुधार के लिए आजकल प्रचलित नशीली मादक वस्तु बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पान बार मसाला जर्दा आदि प्रयोग करते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, सिनेमा आदि देखते हैं, इसके बारे में आप बताएं।
हम क्या बताएं, महान पतन की बात है, पान पर्याग है, नशा उसमें रहता है, नशीली चीज दे देते हैं, उनका सेवन करने से छोड़ सकते हैं नहीं, हमारा माल बिकता रहे, दूसरों दुनिया नुकसान हो गए, ये स्वार्थ बुद्धि बहुत ही भ्रष्ट कर दिया संसार को। इस बात नाटक है, सिनेमा है, मदिरा है, मांस है, मछली है, अंडा है, और ये सुल्फा है, गांजा है, भांग है, तमाकू है, ये जितने व्यसन है सबके सब घोराति घोरम नरकम नयंती जाने वाले है, उनकी शौक लग जाती है तो छूट रहा नहीं है, ये पतन की चीज है, सबको दूर करनी चाहिए, बहनों माताओं को साथ रखना चाहिए। बच्चों में खराब चीज आती है माता पिता से, ये समझे बच्चे आज कहना कहना नहीं मानते, तो नहीं मानते पर मूल में माँ बाप का दोष है। बच्चों की तरफ इतना ख्याल रखना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चा गर्भ में हो तभी माता पिता को ऐसा चाहिए कि अश्लील वाणी न बोले, कुछ ऐसा न करे, सब बिल्कुल सिद्धांत से एकदम निर्लेप होकर रहे, जैसे आपस में बहन भाई आदि रहते हैं इस रीति से, अगर नहीं तो कुछ ऐसा करोगे तो उसका असर पड़ेगा, कर्म के बालक पर पड़ता है, छोटा बालक ये समझता नहीं है क्या है, आपको संवेश दिखता है उसके ऊपर असर पड़ता है, ये माँ बाप की कुचेष्टा से बालक बिगड़ते हैं, बालिकाएं बिगड़ती है, अगर ये ठीक शुद्ध रहे तो महात्मा बन जाए बच्चा। माँ है वो पहला गुरु है, अगर ठीक गुरुपना इसमें हो जाए सुधार के लिए, को वह गुरु ही हितोपदेष्टा, हित करने वाला गुरु होता है, ऐसे हित की भावना से माताएं पालन करे तो बच्चे महात्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, परंतु उनके सामने कुछ ऐसा करते हैं, झूठ खबर करते हैं, बेईमानी करते हैं, खराब खराब काम पेशा करते हैं, फिर के बालक सुधर जाए, कैसे सुधर जाएंगे, दस दस ग्यारह ग्यारह वर्षों के छोरा छोरी नंगे फिरते मैंने देखा, आज छोटे बालक होते हैं तो उसे जाएंगे और पहला देते, क्या है ये पतन है और क्या है, वृत्तियां खराब हो गई, आचरण खराब हो गए, उससे बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चों का दोष नहीं है माँ बाप का दोष है, विशेष करके
वृत्ति खराब होने का अन्न का दोष भी कहा करते हैं,
अन्न का दोष आता पीछे आता है, सबसे पहले मातृभाषा है उसकी, माँ की गोदी होती है, माँ का दूध पीते हैं, माँ का संग करते हैं, पेट में माँ के पेट में रहा उनके स्वभाव का असर पड़ता है। इस बात कहावत है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा माँ पर होता है, माँ की बहुत विशेष जिम्मेवारी है, वो अच्छे बनेगी तो पुत्र उसका अच्छा होगा, प्राय ऐसा हुआ है, नियम तो नहीं बता सकता मैं, पर प्राय ऐसा होता है, जो अच्छे संत महात्मा हुए उनकी माताएं बड़ी अच्छी हुई है, आप खोज कर देख लो, जो जो संत हुए उन संतों का व्यापक अनुसार देखो, माताएं अच्छी हुई है, उनके बच्चे बड़े शास्त्री बड़े उनसे हुए,
आदमी लिखता महाराज जी कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, और घरवाली भी कहती तू बाहर निकल जा, तो मैं क्या करूं,
बहुत करो कृपा होगी भगवान की, कोई कहते हैं कि हमारे घर वाले बच्चे स्त्री सब कहते तुम निकल जाओ, निकाल दे रहे हैं, क्या करूं, अरे भजन करो, मौका मिल गया, कृपा होगी भगवान की, परिवार छूटता नहीं है, स्वभाव छूट गया, बहुत ही बढ़िया बात है, निहाल हो गए, भगवान की महान कृपा हो गई, लग जाओ भजन में, कोई स्त्री है न कोई बच्चे है न कोई बंधु है, कोई हमारा है ही नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, जो मोह छूटना कठिन होता है। गोपनामी या दुष्ट जम स्वजन मार्य पथन से हित्वा, वे स्वजन और आर्य पथ ये बड़ा कठिन त्याग करेगा। वे स्वजन त्याग करे तो निहाल हो गया, एक मुकाम बन ही गया। हिदाते मोह कल बुद्धि व्यति तरिष्यति त्रागंता निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतव्य। तो इससे वैराग्य हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है। वो बड़ भावी है जिसके घर वाले उसको नहीं चाहते। घर वाले ज्यादा चाहते हैं तो उसको खतरा है। और हम खराब तो नहीं करते, घर वालों को अच्छे हैं घर वाले, परंतु उसे खतरा है। और नहीं चाहते वो तो बिल्कुल बेदाग है, मौज से आनंद से परमात्मा प्राप्त कर सकता है। बड़ा अच्छा है।
कहते हैं कि गुरु तत्व बोध गुरु के मुख से सुने बिना तत्व बोध नहीं होता,
हो जाता है। अद्वैतामृत वल्लभी एक ग्रंथ है, आजकल मिलता नहीं है। तो उसमें बोध होने के तरीके कई बताए हैं। उसमें शक्तिपात के वचन आता है, तो शक्तिपात से होता है और वो सब होता है। और वो ज्ञान एक देव ज्ञान होता है, एक आर्ष ज्ञान होता है और एक मानुष ज्ञान होता है। तीन तरह के ज्ञान होता है। तो मनुष्य के द्वारा गुरु के द्वारा वो मनुष्य ज्ञान कहलाता है, और अग्नि इष्ट अपने है उनके भजन करके और ज्ञान प्राप्त वो दैव ज्ञान होता है। और ऋषियों के ग्रंथों को अध्ययन करके और तत्व को प्राप्त करे वो आर्ष ज्ञान होता है। ऐसे उनकी दीक्षा होती है, मानसिक दीक्षा होती है और शारीरिक दीक्षा होती है और वाचनिक दीक्षा होती है। मानसिक दीक्षा होती है, वाचनिक दीक्षा होती है, स्पर्श दीक्षा होती है, दृष्टि दीक्षा, चार तरह दीक्षा होती है, चार तरह दीक्षा होती है।
राम जी कृष्ण ने भी, भगवान ने भी गुरु से उपदेश लिया था,
तो मैं मना नहीं करता गुरु का। गुरु का मैं मना नहीं करता, गुरु बिना ज्ञान हो सकता है ये पूछा था। मैंने नहीं कहा गुरु नहीं सके।
क्या गुरु के मुख से बिना सुने तब तो बोध हो सकता है? क्या
हो सकता है? जगत गुरु कृष्ण मंदिर जगत गुरु हरदम मौजूद रहते हैं। जगत गुरु प्रधान अध्यापक वो कभी नहीं मिलते, सबसे चाहे तो उसको मिला देते हैं। उसकी इतनी विलक्षण कृपा है भगवान की, वो जहाँ चाहेगा वहाँ अगर कुछ ले लिया आगे मिलने का नहीं तो वहाँ से जगह छुड़ा देंगे, क्लास बदल देंगे, संतों को बदल देंगे, संघ बदल देंगे। आप साथ रह जाओगे मेरे संग रहे, यहाँ नहीं रहेगा और संघ भेज दे, वहाँ विलक्षण बात और मिल जाएगी। ऐसे भगवान कर देते हैं। तो भगवान की आस हो जाओ, कोई अर्ज नहीं, उसमें परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। तो गुरु है जिस तत्व में लगा गुरु है। देखो हमारे भाषा दुरुस्त रही है, हम पूछते हैं कि पहले बेटा पैदा होता है कि बाप पैदा होता है? बताओ, पहले बेटा पैदा होता है कि बाप पैदा होता है? बताओ, बोलो, कोई बोले इसमें क्या लज्जा आश्रम का है? पहले बेटा होता है बाप? तो इसमें चेला को परमात्मा की प्राप्ति हो रही तब गुरु होता है, जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं तो गुरु होता ही नहीं। बेटे के बाप कैसे हो जाएगा? बुकार अंधकार बुकार निरोध ग्रत उसके अंधकार दूर कैसे हो जाएगा?
दोनों एक ही साथ होंगे।
और एक साथ नहीं है, पहले शिष्य होता है, शिष्य परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो गुरु आपसे बड़ा हो जाता है, आपसे आप हो ही जाता है।
शंकर भगवान की महिमा सुनने की इच्छा है।
भगवान शंकर की महिमा कृपा करिए, गंगा जी की शंकर की महिमा है। जो मुफ्त में स्नान कर कल्याण कर लो अपना, ये शंकर भगवान की कृपा। भगीरथ ने बुलाया तो भगवान जटा देने खड़े हो गए, तो उसके ऊपर जटा कटाह संभ्रमा भ्रमन लिम्ब निर्जरी मिलोल वीति वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वल लाट प्रत्यपाव के तीसरा निर्धर किशोर चंद्र शेखर रथे प्रदेक्षणम मामा दशकंठ कहता है। तो जटा कटाह संभ्रमा, भगवान जटा कड़ा हो गया, कड़ा कड़ा में पानी घूमता रह गया गाँव। ऐसी दशा हुई गंगा जी में, जब भगवान ऐसे निर्णय तीन धारा हो गई त्रिफलगा में नहीं स्वर्ग मृत पाताल में।
महाराज जी विचार सागर में एक स्थान पर आया कि राम कृष्ण शंकर जो है ये लहरी है उस ब्रह्म के।
शंकराचार्य ने कहा है कि अपार समुद्र तो भगवान है, हम लहरी हैं।
तो क्या ये
बात तीजी है? वो अब भी अपार स्वरूप लहरी विष्णु महेश विधि रविचंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। उन्होंने कहा था अब्दि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, ये बताया। और शंकराचार्य सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहंग नमाम की न सोम सामुद्रो ही तरंग कुदम समुद्रो न तारंग दोनों विरोध आता है। तो शंकराचार्य महाराज इतना आदरणीय है, इतना विचार से आदरणीय नहीं है। वो सिद्धांत पक्का है, ये पंडिताई से लिखा हुआ है, अनुभव नहीं दिखता हमें। तो ऐसा है क्या भगवान जी, हमारे पता है नहीं। परंतु शंकराचार्य महाराज की जो वाणी है वो बहुत विचित्र वाणी है। पंडिताई की वाणी ऐसी नहीं होती। पंडित शंकराचार्य दोनों बातें हैं, पंडिताई भी है तत्व की भी है, दोनों बातें हैं। हरेक में दोनों बात नहीं होती है।
सभी ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, जो तत्वदर्शी लोगों ने जिस तत्व को देखा उनके ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए, सब ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए।
ना ना, जिससे बोध हो जाए ग्रंथों को पढ़े, सब बोध पढ़ सकते ही नहीं आप। ग्रंथ हमारे इतने बड़े हैं, उम्र भर नहीं पढ़ सकते सब। इस वास्ते जिससे सारी तत्व ग्राही मपाल मपाश्य फलू हंसे जिदा क्षीर विबंबू मध्या संत हंस गुण गाही परिहरी बारी विकार। पंक्तिश में आया ग्रंथ मध्य मेधावी विचार जैसे पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थी तदेत ग्रंथम अशेष रहा। धान निकाल दे क्या करे उनको ग्रंथ कहां तक पढ़ेंगे। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है हमें, ये बात है। बोल 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 भाई, डरो मत। वो कह रहे हैं हम भी कहते रहेंगे, तुम बोलो अपनी बात।
गौ हत्याबंदी के लिए अपना पूरा जीवन बिता दे तो अपना कल्याण हो सकता है।
कल्याण क्यों नहीं हो सके? अपना विचार पर पूरा पक्का हो तो कल्याण क्यों नहीं होगा? गोहत्या बंद का जिसका विचार है, एक सिद्धांत का, एक धर्म का ठीक विचार पालन करता है तो धर्म विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का पालन कर बिल्कुल वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य भगवान वंगा हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी।
महाराज ये उक्ति कहती है कि जो कुछ होता है ठीक ही होता है।
होता जो
कुछ होता है वो ठीक ही होता है।
होता ठीक ही होता है,
हो रहा है
होता है, जो ठीक ही हो रहा
है
ठीक ही होगा, वो ठीक ही होगा।
जो कुछ हुआ है ये भी ठीक होगा,
वो ठीक ही हुआ है। मगर करने में गलती हुई है, ये करने वाली होना दो होती है, होने में ठीक ही होता है, करने में महान साधन लाना चाहिए, उसमें अनर्थ असर सब होते हैं। करने में करना अलग है, होना अलग है। मनुष्य करता है एक दो होता है, बुखार आता है तो गोला न देता है उसको, बुलाने क्यों आ गया थे, बुखार क्यों आ गया, अब बुखार आ गया मैं आना थोड़ा ही है। और दूसरे कर क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है, कपट क्यों करता है, उलाना देंगे तो ये कर्तव्य नहीं है। बुखार आवा के बुखार तो उलाना नहीं है, उसने ये कही कुपथ मत किया, कुपथ क्यों किया था मैंने। तो इस वास्ते मनुष्य के कर्तव्य का पालन करना अलग विभाग है, होने का अलग विभाग है। होना है वो तो जैसे होना है होकर रहेगा, हो या सोई जो राम रति राखा, रच करके रख दिया है पहले से, वो हो ही है हमारे सामने, वर्तमान में भविष्य में आएगा, रचिरा का भूतकाल में। और विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो तस कर ही तस फलता का, जो जैसे करता फल चकना पड़ेगा। तो करना अलग है, होना अलग है। करने में जिम्मेवारी कर्ता पर होती है, होने में जिम्मेवारी नहीं होती। होने में कोई संदेह नहीं, होना ठीक होता है, करना ठीक चाहिए। होने में प्रसन्न, करने में सावधान, ये याद कर लो बात। होने में प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो, कल्याण हो जाएगा। व्याख्या नहीं करो, कई दिन करो इतनी व्याख्या है। करना रोना, खेती करते हैं अनाज होता है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, हाथ में होना हो तो सब धनी धनी बनने के लिए गरीब कौन बनेगा। करना हाथ में है, होना हाथ में नहीं है। कर्मण्य अधिकार उस पर माँ फल सुखदास, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, फल नहीं। इस बार माँ कर्म फल हेतु माते संगोष्ठ अकार बनी, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो फिर ठीक होगा। कम शंका करो।
जो ही लोग साधु ऋषि की उपेक्षा करते हैं, आपने उनको और उपकाश दे दिया है कि सब स्वार्थ में करी थी थी, पर ये भी तो कहा है कि शांत स्वार्थ जीव का यह मन क्रम पत्र नाम बदले है, तो ऋषि मुनियों में तो स्वार्थ होता है।
कहते आपने कह दिया ना सुन रुमणी सब की रीति, तो पहले साधुओं का वैसे उपवास होता, और उपवास करवा दिया आपने।
नहीं, उपवास कराने की नीत है ही नहीं भीतर से बिल्कुल।
संत बितरे जगमा यही रहता जड़ जीवन करी सचेता।
मैं तो ये मानता हूँ कि संसार में जितना सद्गुण है, जितने सदाचार है, जितने अच्छे आचरण है, केवल संतों की कृपा है, दो नंबर में भगवान की। जहाँ जहाँ संत घूमे वे गांव और तरह के हैं, जिनमें 100-200 वर्ष से भगवान संत नहीं गए हैं, वो बिल्कुल भूत खड़ा है, वो अच्छे गांव नहीं है, प्रत्यक्ष देखा है मैंने। आदर होना नहीं चाहिए, करना चाहिए, आदर करना चाहिए संतों को, होना चाहिए। प्रथम भगवत संतन कर संगा, जहाँ भक्ति का वर्ण आया है नौधा भक्ति का, वो प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये तो प्रथम भक्ति है। संतों की सेवा नहीं करे तो कहाँ से पाएगा वो, पर संत वास में मन कर्म वचन से संत वो होता है। साधु वेश मात्र का भी आदर करना चाहिए, परंतु संत वो जिसका संग करके अपने कल्याण कर ले, उनका संग करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। गृह को आदर तो पताया चोरो यदि जान डाल, यदि वह पितृघात वैष्णदेव तू प्राप्त संप्राप्त सोचते सर्वभाजन, चोर हो संडाल हो चाहे बाप के मारने वाला ही हो जाए, पर रसोई हो बड़ी है आ जाए तो उसको लौटते दो। हमारा धर्म उदार बड़ा उदार है, तो इस वास्ते साधु की सेवा करो, पुष्प दे दो, कपड़ा दे दो, भोजन दे दो, कुछ परिचित हो तो स्थान दे दो, नहीं तो नहीं बाहर रखो। रावण है और काल में भी देश देश हो जाए, इस वास्ते सावधान रहो।
दुर्वासा जी का क्रोध है महाराज, जीवों के लिए कल्याण के लिए होता था, अनिष्ट के लिए नहीं होता था।
दुर्वासा जी का जो क्रोध था वो जीवों के कल्याण के लिए होता था, अनिष्ट के लिए नहीं होता था।
तो मैं कहता ही नहीं है अनिष्ट के लिए होता, कहता ही नहीं।
तो मैं तो कहता नहीं अनिष्ट के लिए,
अनिष्ट होता ये नहीं कहना मैंने, क्रोध क्यों था वो बताया। क्रोध का कारण अज्ञान है, अज्ञानमेवास्य मूल कारणम तद्ध्यानमेवा त्रिविधो विधीयते विद्यैव तन्नासवदोपटीयसि न कर्म तज्जं सविरोध विदितम्। अज्ञानमेवास्य मूल कारणम, तपस हुए थे बड़े अच्छे थे, शिक्षा ही देते संतों के द्वारा बुरा नहीं होता। जब नलकूर मणिग्रीव का उद्धार किया है यमलार्जुन को गिरा करके, उसमें भगवान ने कहा है नरकूल मणिग्रीव को कि साधु नाम मत्सुत्ता नाम सुतराम मकृतात्म नाम दर्शनाम नो बंधन भवेद बंधा पुरुषोक्ष्म सवितुर यथा। जैसे सूर्य उदय होता है तो आंखों को मदद करता है, ऐसे संत हर हालत में जीव मात्र का कल्याण करते, जिस किसी तरह से कल्याण करते हैं, संतों के द्वारा कल्याण होता ही है। जहाँ संत रहते हैं उनका वहाँ वायुमंडल और तरह का होता है, वहाँ की जनता और तरह की होती है, वहाँ देश बड़ा पवित्र हो जाता है। सिद्ध गया ही पूजिए सिद्ध रहे कोई ठोर उठोर पवित्र हो जाती है, गंगोत्री से लेकर सागर संगम तक है, परंतु हरिद्वार में जाकर वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, जहाँ ऋषि मुनि है सप्तारा है, जहाँ ऋषि संत वहाँ गंगा पवित्र हो गई। गंगा पवित्र होती नहीं कभी, महान पवित्र है, परंतु जहां जहां संत रहे वो दक्षिणा हो गई। अयोध्या है, मथुरा है, माया कैसी कांति अवंतिका सप्तती मूर्ति सब सब संतों के, भगवान के और संतों के और पतिव्रताओं के कारण से तीर्थ बने, जितने बने गए वे तीर्थ बन गए, क्योंकि ये तीर्थ रूप है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा कर आए, तुलसी सरकार ने कहा भगवत विधा भागवता, आपके समान जो भक्त है वो तीर्थ रूप है, वो तीर्थ ही कूड़ती तीर्थ आने स्वांत निकल आवृता, गदा गदाधर भगवान हृदय आप विराजमान है। आप जहाँ जाते हो तो उन तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हो, तीर्थ ही कूड़ते तीर्थान तीर्थों को तीर्थ ही कूड़ते तीर्थ कर देते हैं। तो संतों के चरणों से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, दुनिया तीर्थों से पवित्र होती है और संतों के चरणों से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पर संतों के चरण ये नहीं कि मैंने कह दिया एक संत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। पर संतों की महिमा तो बहुत है, विशेष है। पंत भाई में वेश मात्र की भी एक महिमा है, तभी तो हनुमान जी और सीता जी समय आ गए। वेश साधु का था तो वेश साधु का है, उसका आदर है संसार में। हम एक बागचूरी जोधपुर में रहते थे, पढ़ते थे, उस दिन हमें भिक्षा लाकर भोजन भिक्षा का भोजन करते थे। तो हमारे रामाकृष्ण जी संत थे, वो भिक्षा लाने को जाया करते। भिक्षा लेकर आए तो एक दिन बोले कि हमारे को तो कोई मिलकर नहीं मानता, कि मनुष्य नहीं बनते। क्या हुआ महाराज कि एक घर में कुमार ऐसा था, मैं फोड़ के पीछे चला गया, पीछे चला गया, आवाज कर दी तो माई स्नान कर रही थी। महाराज मैं तेरे कोई मन कहा गया, अरे महाराज आप से महाराज पार तो बोले कि हमारे को तो मन ही नहीं बनते लोग, मैं सोचा कोई मन कहा गया। अर्थ क्या हुआ कि साधु पर इतना विश्वास है कि माँ बाप इतने मानते हैं, इसलिए मैंने कोई मन कहा गया। आप आगे बता, स्नान कर रही थी, नंगी थी, मैंने कहा गया महाराज आप पता गए महाराज आप ही महाराज। संतों की बात ऐसी है, वेशधारी मात्र के प्रति भारतवर्ष की श्रद्धा है। आज बिगाड़ने के लिए बहुत चेष्टा की गई है, बड़ा भारी उद्योग किया गया है, फिर भी भीतर से संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ईश्वर के प्रति जो दृढ़ धारणा है वो हिली नहीं है अभी और हिलेगी नहीं कभी। सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, कुछ भी हो जाए चाहे कितना युग बदल जाए, ऐसी बात है।
मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे सिर पर मृत्यु घूम रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
ये वहाँ आया प्रश्न भागवत में। भागवत में ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, जब बोला भैया मैं क्या करूँ, अब सातवें दिन मुक्ति है, हमारी तो मृत्यु आ जाएगी, तो मुमुर्षु को क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठा है। उसने फिर दान और तप और कई ऋषियों ने कुछ बताए, फिर अंत में बताया भागवत श्रवण करो। ये भागवत का निर्णय हुआ, उसे आगे हुआ सुखदेव होने।
तो भागवत श्रवण करे,
भागवत श्रवण करो तो मतलब भगवान के जस गाओ, सुन करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो,
भगवान नाम लो,
भगवान के आशीष बजाओ। एक हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मार्कंडेय थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, शंकर की उपासना करते थे, जमराज आ गए, फांसी जाने लगे, उन्हें शिवलिंग को बोले नाथ शंकर भगवान भगवान, शंकर प्रकट हो गए। और लेत्रुण करे कैसे मिल जाता है कि महाराज की मृत्यु पूरी दिन आ गया, उसकी मृत्यु आ गई, देख देख मृत्यु कैसे आई, हिसाब कर मृत्यु नहीं आई, अमर हो गए।
क्या प्रश्न
है
आपका?
आप करो भगवान के गुणानुभाव सुनो, पढ़ो भक्तों के चरित्र पढ़ो सुनो, और भगवान का नाम लो, और भगवान के शरण होकर गई। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी सुधरे अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, कुसुम का त्याग करो और भगवान का होकर भगवान का नाम लो। मेरा पार, मैं भगवान का हूँ और किसी अन्य नस्ती बच्चों का हो, न माँ बाप का, न भाई बंधु का, कुटुम्ब का मैं नहीं हूँ, कुटुम्ब मेरा नहीं है, कुटुम्ब का मैं एक अंश हूँ, आधे अंश है, सेवा करने के लिए मैं हूँ, कुटुम्ब से लेने के लिए मैं हूँ ही नहीं, ना स्त्री से चाहते, ना बच्चे से चाहते, ना भाई बंधुओं से, ना माँ बाप से, लेना हमें कुछ नहीं है, इनकी सेवा करना है, सेवा के लिए हमारा संबंध है, इनसे हमें लेना कुछ नहीं, बिल्कुल भीतर की आशा का त्याग कर दे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धि कांता आशाम सुसंग सुस्वा पिंगला। आशा ही परमम दुखम है, संसार से आशा रखना ही है, संसार की सेवा करना कोई हल नहीं है, बस ये निहाल कर देंगे हमारे फट जाओ, फिर आशा रखे फट जाओ। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, परम दोनों दे दिया, आशा ही परमम दुख, दुख नहीं परमम दुख, परमम सुखम, कितनी बढ़िया बात। इस वास्ते संसार से आशा न रख करके सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा करो, सबके न्याय हो जाओ, लहरा तो डूब जाओ, पानी में जा करके पानी को लहरा तो डूब जाएगा, हाथों से ला तो मर्द पार हो जाएगा, संसार समुद्र है, लेना चाहिए क्या ये बात। और पूछो, और बोलो भाई बोलो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हाँ महाराज,
विश्वास श्रद्धा तत्परता तन्मयता आपने आज प्रातः इनका उपयोग किया है, बस इसका अंतर बताएंगे आपको समाधि प्रतीत होता है।
श्रद्धा विश्वास तत्परता तन्मयता इन शब्दों का क्या अर्थ है?
इनका अर्थ एक में तत्पर से लग जाना है, सबका तात्पर्य एक में लगने का है, मात्रा है अलग अलग, मतलब यही ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजय दिंदी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा की क्या पहचान के तत्पर, और तत्परता की पहचान के संजय इंद्रिय, तत्परता होगी तो इंद्रिया आपने भस्म हो जाएगी, भस्म नहीं होते तो तत्परता नहीं है, और श्रद्धा होगी तो तत्परता हो जाएगी, तत्परता नहीं तो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मान लगते ज्ञानम तत्पर संगीत इंद्रिय, और ज्ञानम लगवा प्राण शांति अतिरेण, देरी का काम नहीं, तत्काल शांति, ज्ञानम लगवा प्राण शांति अतिरेण तत्काल। ये सब आ जाएगी, तत्परता तन्मयता तत्परता हुए परायणता, ये तद्बुद्धय सदात्मान तन्निष्ठा सत्परायणा वसंति पुनरावृत्तम ज्ञान निर्दुष्कृषा मत्स्यता मदगत प्राणा बोधयंत्र परस्वरम कथयंत्र मांग नित्यम तुष्यंती से रमंती से तेषाम सतयुक्ता मई सतत युक्ता नाम फलताम प्रीतपूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम ये माँ को ज्ञान दी थी, मेरे को प्राप्त है बुद्धि योग देता हूँ मैं, तत्परता से लग जाऊ के देता हूँ, एक ही बात एक लग जाए भगवान में, सीधी बात है। आत्मचिंतन तो बिना मन बुद्धि के नहीं होगा, मैंने कहा अभ्यास कोई सा ही करो, जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी। हे नाथ मैं आपका हूं, ये स्वयं भगवान के शरण हो जाए, स्वयं वहां जड़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्त्री होती है वो अपने पति को अपने आप को समर्पित कर देती है, फिर उसके लिए करना कुछ बाकी नहीं रहता, अपने आप को ही उसकी मान लेती है, बस हमारे यही प्राणनाथ है, ऐसे मेरे केवल भगवान ही है, परम प्रेमी प्रेमास्पद परम प्राणनाथ परम स्नेही परम हितैषी एक भगवान है, ऐसे आपको भगवान के समर्पण कर दो सीधा है, तो अन्य भाव से भगवान की शरण हो जाए। सर्वभूतम का गीता में सर्वधर्मान प्रति माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, और क्या नहीं हूँ ये साथ होने से उसकी पुष्टि हो जाएगी, अगर और कहा जाए तो देरी लगेगी, मैं भगवान कभी पुष्ट नहीं होगा, जैसे मीरा भाई कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई हो जाएगा ठीक हो जाएगा। दूसरा जब तक है तब तक दृढ़ता नहीं होगी, अनंतता नहीं होगी।
क्या
जरूरत
है
हमारे,
वो तो सर्वंत्र जाने जानते ही है।
क्या जरूरत क्या है, वो तो सर्वंत्र
है। क्या जरूरत है, भगवान
तो सब जानते ही हैं।
और जानते ही नहीं तो जानना काम नहीं आएगा, वो भगवान जानते हैं, भगवान जानना काम नहीं आया, हमारे काम नहीं आएगा। एक आदमी गाय बीमार हो गई तो चिकित्सक के पास गए, भी हमारी गाय है बहुत अच्छी है, उसके रोजाना दूध से पाव घी आता है, ऐसी हमारी गाय है, वो तो गाय बीमार होगी, उपाय बताओ। तो पशु चिकित्सक ने कहा कि पाव घर काली में चले आओ और दो सुथांग आधा पाव घोट करके दे दो और उसके ऊपर पाव घर घी पा दो, दूसरे फिर दे दो फिर पाव घर घी पा दो, ऐसा कर दो ठीक हो जाएगी। तो उसने ना करके काली अंगूर घोट करके वो तो पिला दी कि घी तो गाय में है ही, आज दूहेंगे ही नहीं और कल्याण ऐसी हो जाएगी। गाय होगी बीमार ज्यादा कि तुमने दवाई की घास दवाई की तो क्या किया, काली मिर्च दे दी, घी दिया, घी तो गाय में है तो दे क्या, ऐसे परमात्मा तो सब में है, काम नहीं आते पाओ तो काम आएगा, अगर होता हुआ क्या काम है, बैठे रहो भगवान।
क्या महाराज जी एक बार ही कहना पड़ेगा, जो रोज कहना पड़ेगा,
क्या
चार श्वास में कहना पड़ेगा,
एक बार कहना पड़ेगा, रोज कहना पड़ेगा,
एक बार कहना पड़ेगा, एक बार शब्द आ गया कर रहा वो कहता डरता हूँ मैं, एक बार कहना कहे है कि दो बार कहना बेईमानी है,
दोबारा कहना पड़ता बेईमानी है।
क्यों भगवान का हूँ कह दिया, इसे उठा लिया अपने आप को, फिर क्या मैं आपका हूँ, तो मंदिर थोड़ी है, कह दिया बार बार चरदर्शन किया कोसो तेल है, ये बार बार नहीं चढ़ता। सवार सिंह यात्री क्या गया अब हम स्वरूप होते ददा में तद प्रथम सकृदेव प्रमाण सकृत, एक बार साफ शब्द का सकृदेव प्रपन्नाया अब हम स्वरूप होते वो ददा में तद प्रथम मामा सकृत, बाल्मीकि में अध्यात्म रामायण में आता है, विभीषण की संगति समय वहां था, तो सदैव पर बनना है, एक हुआ ये दाद में आपका, अब लड़की का दो बार ब्याह थोड़ी होता है, एक बार तेल चढ़ती है बस, आजकल बात हम नहीं कहते, हम तो सिद्धांत की बात कहते हैं, दो बार नहीं होते, ब्याह हो गया बस हो गया, सदा के लिए हो ही गया, ये बात है। ऐसे भगवान को स्वीकार किया, हे नाथ मैं आपका हूँ, अब दो बार क्या कहे, एक था वो तो भगवान अर्पित हो गया, अब दोबारा क्या कहे दोबारा क्या कहे, सकल देव प्रपन्न आया और तवास में तीसरी आते अब हम सर्व होते वो दावे तो व्रतम मामा भगवान कहते हैं। नारायण 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 नारायण